पूर्वोत्तर डायरी।
नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। हर सप्ताह आपके बीच हम उपस्थित होते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों को लेकर, और साथ ही चर्चा करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति, कला, परंपरा की। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के ये 8 राज्य अपनी संस्कृति की सुगंध से समृद्ध हैं। यहाँ की हरी भरी वादियों की छटा जो बिखरी होती है वो वास्तव में हमें आकर्षित करती है, और साथ ही जो प्रकृति की छटा, नदियों, झरनों की कलकल और पर्वतों का जो सौंदर्य है वो हम सभी को अपनी ओर खींचता है। तो आज फिर से इस आधे घंटे आप हमारे साथ रहिए और पूर्वोत्तर राज्यों के सफर पर चलिए।
पूर्वोत्तर डायरी।
चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू हुई एक अनोखी पहल से। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं तो अक्सर हमारा मकसद होता है कि उस क्षेत्र में जाएं, उस क्षेत्र में घूमें और वहां की प्रकृति की, वहां की छटा को निहारें। लेकिन अब पूर्वोत्तर राज्य, खास तौर पर सिक्किम, इस परंपरा को बदलने जा रहा है। सिक्किम के एक छोटे से गाँव में एक खास पहल की गई है। यहाँ एक पर्यटक के तौर पर नहीं बल्कि एक काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर आप जा सकते हैं और वहां ठहर कर अपना काम निर्बाध तरीके से कर सकते हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसमें आप प्रकृति को निहारते हुए अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मुहैया इस गांव में की जा रही हैं। आइए जानते हैं कि सिक्किम में वो कौन सा गांव है जहां पर आप कुछ समय बिताकर अपने कार्यालय का काम भी पूरा कर सकते हैं और एक पर्यटक के तौर पर वहाँ घूम फिर भी सकते हैं। सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
सिक्किम की हरी भरी वादियों और शांत वातावरण के बीच एक नई और अनोखी पहल शुरू हुई है, जो न केवल पर्यटन को एक नया दृष्टिकोण देती है बल्कि देश के युवाओं को एक नई राह भी दिखाती है। बीती 14 जुलाई को सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकतेन गांव में भारत के पहले डिजिटल नोमैड विलेज का उद्घाटन हुआ। नोमैड सिक्किम नाम से शुरू हुई ये पहल जिला प्रशासन पाक्योंग और सर्वहिताय नामक गैर सरकारी संस्था के संयुक्त प्रयास से साकार हुई है। इस पूरी योजना का उद्देश्य है कि देश विदेश के वो युवा जो कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से दूरस्थ कार्य या वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अब शहरों की भीड़ से दूर आकर किसी गांव में शांति से रह सके, प्रकृति के करीब रहकर काम कर सके और साथ ही उस गांव के लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध बना सके। इस पहल के पीछे एक गहरी सोच ये भी है कि अब केवल पर्यटन के मौसम तक सीमित रहना आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल नोमैड साल भर काम करते हैं और वो किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी स्थायी रूप से बढ़ सकती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि गांव के निवासियों की आय 5 गुना तक बढ़ सकती है। याकतेन गांव, जो समुद्र तल से लगभग 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य का उदाहरण है। यहां से विशाल हिमालय, खासतौर से कंचनजंगा शिखर का नजारा दिखाई देता है और चारों ओर हरियाली, देवदार के पेड़ और पहाड़ी घाटियां मन को प्रसन्न कर देती हैं। इस गांव को विशेष रूप से डिजिटली काम करने वालों के लिए तैयार किया गया है। गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें 2 कनेक्शन हैं, जिनकी गति 25 से 50 Mbps तक है। ये सुविधा होम स्टे और को वर्किंग स्पेस दोनों में उपलब्ध है, ताकि काम करने में कोई रुकावट ना हो। बिजली की अनियमितता को देखते हुए यहाँ इन्वर्टर और जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है। पेयजल की व्यवस्था के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत साफ और निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। याकतेन में 8 ऐसे होमस्टे हैं जो विशेष रूप से वर्क फ्रेंडली बनाए गए हैं। इनमें टेबल, कुर्सियां, वाईफाई, बैकअप पावर जैसी मूलभूत सुविधाएं भी हैं। यहां रहना किफायती भी है। इसके अलावा को वर्किंग स्पेस भी तैयार किए जा रहे हैं, जहां लोग मिलजुल कर काम कर सकते हैं और साथ में योग, ध्यान और अन्य गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। काम के साथ साथ प्रकृति का अनुभव करना भी यहाँ के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्थान उन लोगों के लिए आदर्श है जो लेखन, डिजाइन, योग प्रशिक्षण, स्टार्टअप संचालन या फ्रीलांसिंग जैसे कार्य करते हैं और प्रकृति की गोद में रहकर सुकून के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। याकतेन के आसपास कुछ बेहतरीन ट्रैकिंग स्पॉट भी हैं, जैसे झंडीदारा और बुडांगदारी, जहां तक पैदल जाया जा सकता है और रास्ते भर प्रकृति के अनुपम दृश्य देखने को मिलते हैं। ये स्थान उन लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है जो पक्षी दर्शन, तितलियां देखने के शौकीन हैं और बागवानी या स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं। यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ काइजरे हिंद तितली यहाँ की विशेष पहचान बन गई है। नोमैड सिक्किम केवल डिजिटल कार्य के लिए एक मंच नहीं है, बल्कि ये स्थानीय संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का भी एक माध्यम है। यहाँ आने वाले लोग घर का बना हुआ सिक्किमी भोजन खा सकते हैं, पारंपरिक नृत्य और संगीत देख सकते हैं और गांव वासियों के साथ मिलकर जंगल की सफाई जैसी गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। ये पारस्परिक आदान प्रदान एक ऐसी सामाजिक ऊर्जा पैदा करता है जो न केवल पर्यटक को एक नए अनुभव से जोड़ता है, बल्कि गांव के निवासियों के जीवन को भी समृद्ध करता है। याकतेन को पूर्ण रूप से शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट की नीति के अंतर्गत विकसित किया गया है। यहाँ प्लास्टिक का पुनः उपयोग, कचरे का सही तरीके से प्रबंधन और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार ये गांव केवल डिजिटल कार्य के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरण आदर्श के रूप में भी उभर कर सामने आया है। यात्रा की दृष्टि से भी याकतेन पहुंचना आसान है। ये गांव गंगटोक से लगभग 32 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी हवाई अड्डा पाक्योंग एयरपोर्ट है जो केवल 10 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचना सरल और आरामदायक है। यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय मार्च से मई और अक्टूबर से नवंबर तक माना जाता है। इन महीनों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है, फूलों की बहार होती है और आसमान साफ रहता है, जिससे पर्वत श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। याकतेन केवल एक गांव नहीं रह गया है बल्कि ये भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट बन गया है जो अन्य पहाड़ी इलाकों जैसे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के लिए प्रेरणा बन सकता है। ये पूरी योजना सिक्किम सरकार की वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर नीति के अनुकूल है, जिसमें हर परिवार को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया जा रहा है। इस मॉडल से ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता की भावना भी बढ़ेगी। इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये वैश्विक स्तर पर भारत को डिजिटल नोमैड गंतव्यों की सूची में शामिल करता है। जिस तरह से बाली, पुर्तगाल और क्रोएशिया जैसे देशों में डिजिटल नोमैड संस्कृति विकसित हुई है, उसी तरह याकतेन भी अब उन नक्शों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। याकतेन गांव में पहले से ही कुछ डिजिटल नोमैड आ चुके हैं और ये वहां के वातावरण, सुविधाओं और लोगों की आत्मीयता से एक नया अनुभव ले रहे हैं। उनके अनुभव अब दूसरों को भी आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ रुकने के लिए नोमैड सिक्किम की आधिकारिक वेबसाइट www.nomadsikkim.org के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। इस पूरी पहल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि सही सोच, सही योजना और लोगों की सहभागिता हो तो कोई भी छोटा गांव वैश्विक पहचान बना सकता है। ये केवल पर्यटन की बात नहीं है बल्कि ये जीवन जीने के एक नए ढंग, एक नई सोच और ग्रामीण भारत की नई शक्ति की कहानी है। याकतेन आज भारत के उस भविष्य की झलक देता है जहाँ काम और जीवन का सही संतुलन संस्कृति और नवाचार के साथ संभव है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सरफिरोजी।
सिक्किम से अब हम चल रहे हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के ढलाई क्षेत्र और उत्तर त्रिपुरा जिलों में एक खास पहल की जा रही है। भारत जर्मन सहयोग के तहत यानी इंडियन जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत ये खास पहल की गई है, जिससे वहां रहने वालों के लिए कई फायदे हो रहे हैं। ये पहल त्रिपुरा के वन विभाग द्वारा भी की जा रही है, जिसे नाम दिया गया है IGDC क्रेफलेट। तो IGDC क्रेफलेट पहल क्या है और किस तरह से इससे वहां के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इस बारे में हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे ने हमें एक खास रिपोर्ट भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
भारत जर्मन विकास सहयोग के तहत IGDC क्रेफलेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य वनों के क्षरण की समस्या को कम करना और लक्षित समुदायों की आय में वृद्धि करना है। ये कार्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत, जलवायु लचीले और सहभागी प्रबंधन के जरिए किया जा रहा है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी और यह 2027 तक चलेगी। कुल 280 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना धलाई और उत्तर त्रिपुरा जिलों के 129 गांवों में लागू की जा रही है, जिसमें से 107 गांव धलाई के 8 विकास खंडों और 22 गांव उत्तर त्रिपुरा के 3 खंडों में स्थित है। पिछले सप्ताह बुधवार को त्रिपुरा मिजोरम सीमा के समीप डमचिरा में एक विशेष सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पारंपरिक आदिवासी परिधान रिग्ने बुनने के लिए धागे 260 महिला लाभार्थियों को वितरित किए गए। साथ ही उत्तर त्रिपुरा की 13 ग्राम समितियों की फुटबॉल टीमों को स्टड्स और जर्सी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर त्रिपुरा के वन मंत्री अनिमेष देवबर्मा ने कहा कि परियोजना का मुख्य फोकस जैव विविधता की रक्षा और वनों में रहने वाले समुदायों को संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक RK समल ने बताया कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने और उनमें नेतृत्व, अनुशासन व समुदाय विकास की भावना जगाने में सहायक है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि परियोजना के तहत चेक डैम निर्माण, सुअर पालन, बकरी पालन और मत्स्य पालन जैसी आजीविका संवर्धन की पहले भी की जा रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट।
भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र अनायास ही हम सभी को अपनी ओर खींचता है और इसका कारण हम सभी जानते हैं कि यहाँ की जो कला, परंपरा, संस्कृति, पर्यटन और तमाम पहलू हैं वो हम सभी को आकर्षित करते हैं। तो चलिए हम अपने श्रोताओं को पूर्वोत्तर राज्यों की एक बहुत ही अद्भुत सैर पर लिए चलते हैं। आज हम 3 प्रमुख राज्यों का जिक्र कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। तो आइए बारी बारी से इन राज्यों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और आपको उम्मीद है कि इस यात्रा में बहुत आनंद आने वाला है। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इस राज्य को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अनोखी पहचान देती है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, रीति रिवाज और कला शामिल हैं, जो इसे और भी अनोखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 26 जनजातियां और 100 से ज्यादा उप जनजातियां निवास करती हैं। यहां की प्रमुख जनजातियों में न्याशी, अवतानी, मिश्मी, गालो आदि और मोनपा शामिल हैं। हर जनजाति के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जनजातीय लोग अपनी संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं और इसे अगली पीढ़ियों तक सहेज कर रखने का प्रयास करते हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली मुख्यतः प्रकृति पर आधारित होती है और उनके धार्मिक विश्वास भी प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। इस राज्य के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। यहाँ के लोग सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और पहाड़, नदियों की पूजा करते हैं। प्रमुख धार्मिक मान्यताओं में डोनी पोलो और आन नामक मान्यताएं शामिल हैं। डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा की पूजा से जुड़े हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के अवतानी और न्याशी जनजातियों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के अनुयायी भी रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अहम हिस्सा है। हर जनजाति का अपना विशिष्ट नृत्य है, जो आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। बुघन और पोपिर जैसे नृत्य अवतानी जनजाति के बहुत प्रसिद्ध नृत्य हैं। याक नृत्य मोनपा जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग याक के वेश में नृत्य करते हैं। ये नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि धार्मिक विश्वासों का भी प्रतीक है। अरुणाचल प्रदेश के कलाकार पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र जैसे ढोल, डपांग, जंग और पिन पाइप का ऐसे अवसरों पर प्रदर्शन करते हैं जिनसे उनके नृत्यों की प्रस्तुति और भी जीवंत हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश की हस्तकला और शिल्प कला भी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बांस, लकड़ी और बेंत का उपयोग कर विभिन्न वस्तुएं बनाते हैं। इनमें टोकरियां, चटाई, टोपी और सजावट के सामान शामिल हैं। मोनपा जनजाति की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। इसमें वे लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करते हैं। इसके अलावा मिश्मी जनजाति के बनाए हुए पारंपरिक आभूषण और वस्त्रों की भी अपनी पहचान है। इनके कपड़ों में प्रमुख रूप से हाथ के बनाए हुए डिजाइन शामिल होते हैं जिन पर रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न बनाए जाते हैं। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और ये एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है। इसे 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये मठ लामा मठों की परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर साल कई बौद्ध कार्यक्रम होते हैं जिनमें न केवल स्थानीय लोग बल्कि कई पर्यटक भी भाग लेते हैं। ये मठ अरुणाचल प्रदेश की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। अगर उत्सव और त्योहारों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध त्योहार लोसार है जो बौद्ध नववर्ष का प्रतीक है। मोनपा और शेरदुकपेन जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला ये त्योहार एक सप्ताह तक चलता है जिसमें लोग प्रार्थना करते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा न्योकुम मोपिन और सोलुंग जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में कृषि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है क्योंकि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। इस राज्य का पहनावा और आभूषण यहाँ की संस्कृति की खास पहचान है। हर जनजाति का अपना अलग पहनावा है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। मोनपा जनजाति की महिलाएं शामा नामक एक विशेष परिधान पहनती हैं। अवतानी जनजाति की महिलाएं अपनी नाक में एक विशेष प्रकार का आभूषण पहनती हैं जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। इसी तरह से यहाँ की विभिन्न जनजातियों की परंपराएं, नृत्य कला और धार्मिक मान्यताएं इस राज्य को भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देती है। असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में असम को वहां की सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध परंपराओं और अनूठी लोक कलाओं के लिए जाना जाता है। यहां का इतिहास, भौगोलिक विशेषताएं और समुदायों की विविधता असम की सांस्कृतिक धरोहर को अद्वितीय पहचान प्रदान करती है और हम समझेंगे कि असम की संस्कृति, कला और लोक परंपरा के विभिन्न पहलू क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें असम की संस्कृति और यहाँ के जीवन शैली के बारे में तो असम की संस्कृति वैष्णव, शाक्त और तांत्रिक परंपराओं के साथ साथ यहाँ की आदिवासी मान्यताओं का एक बहुत खूबसूरत संगम पेश करती है। ये राज्य खासकर अपनी संगीत, अपने नृत्य और यहाँ के विविध प्रकार के त्योहार और रीति रिवाजों के लिए मशहूर है। असम में वैष्णव धर्म का एक विशेष महत्व है और इसका श्रेय अगर हम दें तो संत श्रीमंत शंकर देव ने इसे प्रचलित किया था और इसके अलावा यहाँ के विभिन्न आदिवासी समुदाय भी अपनी अपनी परंपराओं को निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बोडो समुदाय, मिसिंग समुदाय, खारबी समुदाय यहाँ के प्रमुख समुदाय हैं जिनके अलग अलग रीति रिवाज हैं और परंपराएं हैं। और इसके अलावा असम की लोक कला और शिल्प कला के बारे में हम बात करें तो असम की लोक कला का मुख्य आधार है यहाँ की हस्तकला और बुनाई। आपने सुना ही होगा कि असम की रेशम की साड़ियाँ खासी मांग में रहती हैं और खासतौर पर यहाँ का जो मूगा सिल्क है उसकी बहुत मांग रहती है देश दुनिया में और ये असम का एक पारंपरिक परिधान भी कहलाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग कपास और पाट का भी इस्तेमाल करते हैं। असम की बांस की कला भी बहुत मशहूर है और बांस का इस्तेमाल यहाँ के लोग रोजमर्रा की चीजों के साथ साथ सजावटी वस्त्रों के लिए भी करते हैं। और यहाँ के बांस के बर्तन बहुत प्रसिद्ध हैं। बांस की टोकरियां भी आपने कई शिल्प मेलों में देखी होंगी और घर के निर्माण में भी बांस का काफी इस्तेमाल किया जाता है। असम के हस्तशिल्प कारीगर यहाँ की पीढ़ियों से इस परंपरा को संरक्षित करते आ रहे हैं और नई पीढ़ियां भी इस पर गर्व करती हैं और इसे आगे बढ़ा रही हैं। असम की संगीत और नृत्य, अगर इसकी हम चर्चा करें तो असम का संगीत और नृत्य भी राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बहुत आगे बढ़ाता है और इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग खासतौर पर ढोल का प्रयोग करते हैं और एक बहुत खूबसूरत वाद्य यंत्र है यहाँ का गगना, और ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल अक्सर यहाँ के नृत्यों में किया जाता है। अगर हम बात करें बिहू नृत्य की तो असम का ये सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो यहाँ के बिहू त्योहारों के दौरान विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के जरिए किसान अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन की कामना करते हैं। बिहू नृत्य में उत्साह, उमंग और प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा सतरिया नृत्य भी यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है। ये एक तरह का शास्त्रीय नृत्य है और जिसे संत शंकरदेव ने प्रचारित किया था। ये नृत्य खासतौर पर वैष्णव मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें धार्मिक कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। इससे असम की सांस्कृतिक धरोहर को एक बहुत बल मिलता है और हम देखते हैं कि इस नृत्य की बहुत पहचान हुई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। असम के त्योहारों की अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख त्योहार जिसकी हम चर्चा करते ही आ रहे हैं वो है बिहू, और बिहू को खास तौर पर कृषि आधारित त्योहार कहा जाता है। इसे साल में 3 बार मनाया जाता है, जैसे रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। तो रोंगाली बिहू की अगर हम बात करें तो ये नए साल की शुरुआत और फसल की बुआई के साथ मनाया जाता है, जबकि कोंगाली बिहू शरद ऋतु में और भोगाली बिहू जब फसल की कटाई होती है तो उस समय ये त्योहार मनाया जाता है। इन तीनों त्योहारों में नृत्य, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों का खास महत्व होता है। और असम के जो दूसरे प्रमुख त्योहार हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है, दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पर होली भी धूमधाम से मनाई जाती है, और अलग अलग समुदायों के जो त्योहार हैं वो भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम असम के भोजन की अगर बात करें तो संस्कृति का भोजन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है, तो असम में भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ का भोजन खास तौर पर प्रकृति और जलवायु के अनुकूल बनता है। यहाँ का खाना सादा होता है, पौष्टिक होता है, जिसमें चावल का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। मछली और साग का भी यहाँ पर प्रयोग खाने में बहुत ज्यादा होता है। असम के प्रसिद्ध व्यंजनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक व्यंजन है खार, इसी तरह से तेंगा और पिथा, ये बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है। अगर पिथा की ही हम बात करें तो ये एक प्रकार का चावल से बना हुआ पकवान होता है जो विशेष तौर पर बिहू के अवसर पर बनाया जाता है। यहाँ के व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिहाज से, पोषण के लिहाज से भी फायदेमंद माने जाते हैं। असम की भाषा की हम बात करते हैं। असम का साहित्य खासतौर पर असम की प्रमुख भाषा असमिया में ही है, और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया, और असम की राज्य भाषा है वो आधिकारिक भाषा भी असमिया ही है। असमिया भाषा का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध है और हमने एक बार कार्यक्रम में आपके साथ विस्तार से चर्चा भी की थी कि किस तरह से अलग अलग पड़ावों में यहाँ का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध होता चला गया। अगर हम आपको संक्षेप में बताएं तो संत शंकरदेव के समय से यहाँ के साहित्य में धार्मिक सांस्कृतिक विचारों का समावेश हुआ। असमिया भाषा में महाभारत का भी अनुवाद किया गया था। असमिया साहित्य में कई आधुनिक और पारंपरिक लेखक और विचारक भी सामने आए हैं, और बहुत से लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार भी इस साहित्य में प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने असम की पहचान को भारत और विश्व भर में स्थापित किया है। अगर हम कुल मिलाकर बात करें तो असम की संस्कृति, कला, लोक कला, परंपरा और खासतौर पर यहाँ का इतिहास, उसकी न केवल भूमि बल्कि वहाँ के जो लोगों की जीवन शैली है उसको और ज्यादा जीवंत बनाता है। यहाँ का हर त्योहार, नृत्य, गीत और परिधान असम की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक खास बात ये भी है कि अक्सर बहुत से भाषा, बोलियां या संस्कृति इस तरह से लुप्त होती चली जाती हैं, लेकिन असम उन विशेष राज्यों में से है जहाँ की संस्कृति, भाषा लगातार उन्नत होती गई है और ज्यादा प्रचलित होती गई है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और परंपरा पर गौरव करते हैं। किस तरह से सांस्कृतिक विविधता को और अधिक समृद्ध बनाने में भी असम की संस्कृति और भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं, मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, लोक नृत्य और हस्तशिल्प पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर एक वो राज्य है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविध परंपराओं के लिए अन्य राज्यों की तरह पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। ये राज्य लोक नृत्य, शिल्पकला, पारंपरिक खेल, खानपान की अद्भुत विविधता को खुद में समेटे हुए है। नृत्य और संगीत की अगर हम बात करें तो मणिपुर का रासलीला नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। ये नृत्य राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम कथा पर आधारित है और इसे गहरी भक्ति के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो थांगता एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य है और इसमें तलवार और भाले का इस्तेमाल किया जाता है। नुपा पाला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है जिसे सिंबल डांस भी कहते हैं। ये पुरुषों के समूह का एक नृत्य है जिसमें मृदंग और खड़ताल के ताल पर नृत्य किया जाता है। अब हम पारंपरिक खेलों की बात करें तो मणिपुर पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों के मामले में सबसे प्रसिद्ध राज्य है और मणिपुर का खेल इतिहास भी बहुत समृद्ध रहा है। जैसे यहाँ का सगोल कांगजेई एक आधुनिक पोलो की तर्ज पर एक खेल है और यहाँ का प्रमुख खेल भी इसे माना जाता है। इसके अलावा और भी प्रमुख खेल हैं जैसे खोंग कांगजेई, ये मणिपुरी हॉकी की तर्ज पर एक खेल है, और हियांग तानबा, ये एक नौका दौड़ की प्रतियोगिता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को ये सभी खेल दर्शाते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ और भागीदारी के साथ राज्य भर में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। हस्तशिल्प और हथकरघा की अगर हम बात करें तो मणिपुर का हथकरघा उद्योग भी यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। मणिपुरी शॉल और साड़ियों की बुनाई बहुत प्रसिद्ध है और बहुत अनोखे डिजाइन और रंग बिरंगे डिजाइन यहाँ पर कढ़ाई में मिलते हैं। यहाँ के हस्तशिल्प जैसे बांस और बेंत से बनी वस्तुएं भी बहुत मशहूर हैं। पारंपरिक भोजन की अगर हम बात करें तो मणिपुरी व्यंजन सादगी और पोषण से भरपूर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में यहाँ ज्यादातर चावल का इस्तेमाल किया जाता है। सब्जियां और मछली भी खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं और खासतौर पर यहाँ का एक प्रमुख खाद्य है इरम्बा, जो सब्जियों और मछली का एक मिश्रण होता है। इसके अलावा सिंजू, जो पारंपरिक सलाद है, और नगड़ी, जो एक फर्मेंटेड मछली का एक पदार्थ है, यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन त्योहारों के अवसर पर भी बनाए जाते हैं। और हम त्योहारों की ही बात करें तो मणिपुर में त्योहारों का विशेष महत्व है, जैसा कि हम तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में देखते हैं, जहाँ संगाई महोत्सव राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प का प्रदर्शन होता है। इसके साथ ही यहाँ के जनजातीय समुदाय के अनुष्ठान और नृत्य और परंपराएं राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। अगर हम कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर की संस्कृति, उसकी कला, यहाँ का नृत्य, खेल और खानपान में यहाँ की पूरी संस्कृति झलकती है और ये राज्य अपनी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखता है और उन्हें संजोए हुए है। मणिपुर की सांस्कृतिक विरासत न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है। लाए जनूंगी मनी। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। पूर्वोत्तर डायरी।